साहित्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए मुक्तिबोध ने जो कुछ कहा है उससे उनका दृष्टिकोण और स्पष्ट होकर सामने आता है। वे कहते हैं, जनता के साहित्य से अर्थ है ऐसा साहित्य जो जनता के जीवन मूल्यों को, जनता के जीवन आदर्शों को प्रतिष्ठापित करता हो, उसे अपने मुक्ति पथ पर अग्रसर करता हो। इस मुक्ति पथ का अर्थ राजनीतिक मुक्ति से लगाकर अज्ञान से मुक्ति तक है। अतः इसमें प्रत्येक प्रकार का साहित्य सम्मिलित है, बशर्ते कि वह सचमुच उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करे। मुक्तिबोध की साहित्य दृष्टि को समझने के लिए उनके सिद्धांत विवेचन से अधिक उपयोगी उनकी व्यवहारिक समीक्षा है। उन्होंने कामायनी और नई कविता की विस्तृत समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने त्रिलोचन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, शमशेर, भारत भूषण अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, दिनकर और कुंवर नारायण की रचनाओं की भी समीक्षा की है। इन समीक्षाओं में व्यक्त उनके विचार और निष्कर्ष उन्हें समझने के लिए नितांत आवश्यक हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी की समीक्षा करते हुए यह प्रतिपादित किया कि प्रसाद में जीवन यथार्थ को समझने की क्षमता थी। उनकी संवेदनशीलता भी उच्च कोटि की थी, किंतु जीवन यथार्थ से उत्पन्न समस्याओं को जो समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया है वह वायवी है, अव्यावहारिक है। वह व्यक्तिक धरातल पर अद्वैतवादी दर्शन की आदर्शवादी परिणति के आधार पर किया गया है। स्वयं मुक्तिबोध के शब्दों में अधिक से अधिक प्रसाद जी के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उनका दर्शन एक उदार पूंजीवादी व्यक्तिवादी दर्शन है, जो कि एक मुंह से वर्ग विषमता की निंदा करता है तो दूसरे मुंह से वर्गातीत, समाजातीत, व्यक्तिमूलक चेतना के आधार पर समाज के वास्तविक द्वंद्वों का वायवीय तथा काल्पनिक प्रत्याहार करते हुए अभेदानुभूति के आनंद का भी संदेश देता है। निश्चय ही समाजातीत, वर्गातीत, व्यक्तिमूलक आनंदवादी अद्वैतवाद अपने अंतिम निष्कर्षों में उसी विषमतापूर्ण समाज की स्थिति में कुछ सतही परूपरी परिवर्तन करके संतुष्ट है। त्रिलोचन की धरती की समीक्षा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और सुभद्रा कुमारी चौहान का मूल्यांकन 1948 ईस्वी में। उस समय तक प्रगतिवाद का आकर्षण कम हो गया था, किंतु नई कविता का दौर आरंभ नहीं हुआ था। 1946 में त्रिलोचन की संघर्षशील चेतना का उल्लेख करते हुए मुक्तिबोध ने कहा था, इसी संघर्ष ने उसकी चेतना को मात्र विकसित ही नहीं किया, उसे प्रसरणशील भी बनाया और जीवन के विविध अंगों को समझने की शक्ति भी दी। इस वैविध्य के प्रति संघर्षात्मक प्रसरणशील अनुरक्ति ने उसके मन को वस्तुन्मुख और बुद्धि प्रधान भी कर दिया है। इसके कारण ही उसके काव्य में बेचैनी और विह्वलता नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार की तटस्थता है। सुभद्रा जी के काव्य का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रगतिशील आलोचकों तथा लेखकों के लिए सुभद्रा जी के काव्य में नवीन सामग्री है। आत्मसात करने के लिए, विशेषकर उनकी काव्य शैली में जीवन प्रसंगों की भूमिका तथा कुछ कविताओं के नाटकीय तत्व के साहित्यिक महत्व का आकलन आवश्यक है। साथ ही सर्वप्रधान वस्तु है जीवन के वास्तविक धरातल पर बाह्य स्थिति परिस्थितियों से मानसिक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया और उसको काव्योचित महत्व प्रदान करने का कार्य, जो हिंदी के बहुत थोड़े कवियों ने किया है। श्री हरिशंकर परसाई की विशेषता लक्षित करते हुए उन्होंने कहा, परसाई का सबसे बड़ा सामर्थ्य संवेदनात्मक रूप से यथार्थ का आकलन है, चाहे वह राजनीतिक प्रश्न हो या चरित्रगत। हमारे यहाँ के साहित्यिक संस्कृति ने सच्चाई के प्रकटीकरण पर जो हृदय हदबंदी करके रखी है उसे देखते हुए परसाई जी की कला सहज ही वामपंथी हो जाती है। प्रेमचंद उनकी दृष्टि में उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रांति के प्रथम और अंतिम महान कलाकार थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य के नैतिक प्रभाव से वे मुक्त थे। उन्होंने कहा है, प्रेमचंद का कथा साहित्य पढ़कर आज हम एक उदार और उदात्त नैतिकता की तलाश करने लगते हैं, चाहने लगते हैं कि प्रेमचंद के पात्रों के मानवीय गुण हम में समा जाएं, हम उतने ही मानवीय हो जाएं जितना कि प्रेमचंद चाहते हैं। शमशेर की कई विशेषताएं उन्होंने लक्षित की हैं। उनकी दृष्टि में शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। वे मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी हैं। वे प्रणय जीवन के प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं। वे विशिष्ट भाव प्रसंग में विभिन्न संवेदनाओं के प्रभावकारी गुणों के चित्र इम्प्रेशनिस्टिक शैली में चित्रित करने में अन्यतम हैं। निष्कर्ष रूप में वे कहते हैं, असल में शमशेर की आत्मा एक रोमांटिक क्लासिकल प्रचार की है, किंतु इम्प्रेशनिस्टिक होने के कारण उनका जोर संवेदन विशिष्टता और संवेदनाघात पर और केवल इसी पर होने से वे नई कविता के एक अद्वितीय कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारत भूषण अग्रवाल का काव्य उन्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उसने अनेक जीवन सत्यों को उद्घाटित किया है, जीवन की असंगतियों का पर्दाफाश किया है। उनके ये उद्घाटन महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका काव्य महत्वपूर्ण रहेगा। धर्मवीर भारती के अंधायुग की उनकी समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, पहली बात जो बार बार दिमाग में टकराती है वह यह कि श्री भारती रास के लक्षणों को उसके कारणों से कन्फ्यूज कर देते हैं। नैतिक गिरावट स्वयं एक लक्षण है जो अन्य घटनाक्रमों या अन्य मानसिक विकास दृश्यों को का कारण हो सकती है, किंतु इस गिरावट का कारण व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक है या ऐतिहासिक समाजशास्त्री, इस प्रश्न पर या तो श्री भारती ने विचार नहीं किया या विचार करके उसे छोड़ दिया, उसकी तह में नहीं गए। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो श्री भारती सभ्यता की आलोचना तो करते हैं किंतु समाजशास्त्री जिज्ञासा के अभाव के शिकार होकर। यह होने पर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि अंधायुग नई साहित्य पीढ़ी का एक अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रयास है। सुमित्रानंदन पंत का मूल्यांकन करते हुए मुक्तिबोध ने एक प्रकार से छायावाद के सभी प्रमुख कवियों निराला प्रसाद महादेवी का मूल्यांकन कर दिया है। उन्होंने लक्षित किया है कि वास्तविक जीवनानुभव की जितनी संपन्नता निराला प्रसाद में है उतनी उस हद तक उस मात्रा में पंत जी के पल्ले नहीं पड़ी, इसीलिए उनका काव्य मात्र दृष्टि काव्य बनकर रह गया, मर्म काव्य नहीं बन सका। वे कहते हैं, जहां इस प्रकार दृष्टि काव्य प्रकट हुआ है वहां महाजीवन तत्वों की रिक्तता सी प्रकट होने लगी है। यह होने पर भी मुक्तिबोध अनुभव करते हैं कि पंत जी में अद्भुत सहानुभूति क्षमता है। जनगण के प्रति उनकी सहानुभूति बौद्धिक नहीं है, छिछली नहीं है, सतही नहीं, वह बहुत गहरी है। पंत जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य चित्रित है। यह मनुष्य अमूर्त नहीं है, वह साक्षात जनगण है। मुक्तिबोध के शब्दों में, जहां पंत जी इस जनगण से एकीभूत होकर भावना स्तर पर बात करने लगते हैं, तब जिस प्रकृति सौंदर्य का वह चित्रण करते हैं उस सौंदर्य में भी जन जन के मुख झलकने लगते हैं। पंत जी मानवतावादी नहीं, मानवतावाद का एक अरूपवाद है, एक एब्स्ट्रैक्शन है। पंत जी मनुष्यवादी हैं, जनवादी हैं, उनका काव्य इस नई भावना से उद्दीप्त हो उठा है। दिनकर की उर्वशी की समीक्षा करते हुए मुक्तिबोध ने बताया कि यह एक कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित है। वस्तुतः कवि अपनी कामात्मक स्प्रियाओं को उचित ठहराना चाहता है, इसलिए उसने आध्यात्मिक रहस्यवाद का सहारा लिया है। मुक्तिबोध के शब्दों में, उर्वशी एक बृहत कल्पना स्वप्न है जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से लेखक अपनी कामात्मक स्प्रियाओं का आदर्शीकरण करता है और उन्हें एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औचित्य प्रदान करता है। कथानक की ऐतिहासिकता केवल एक भ्रम है। यहाँ यह स्मरणीय है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उर्वशी को दिनकर का शिखर ग्रंथ माना है और कहा है कि सामयिक कविता की उपलब्धियाँ, उसकी आयाम और उसकी विधाएँ इस मेरु के आसपास उगे हुए झाड़ झंखाड़ जैसी लगती है। कल्पना और यथार्थ, दर्शन और श्रृंगार के अद्भुत सम्मिश्रण के कारण यह ग्रंथ प्रत्येक मनीषी कवि और काव्य प्रेमी के चिंतन, अध्ययन और रसास्वाद का केंद्र बनेगा। भाषा, युगबोध और कविता। मुक्तिबोध ने कुंवर नारायण के काव्य परिवेश हम तुम की विस्तृत समीक्षा की है। उनके अनुसार कुंवर नारायण की कविता अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना और जीवन की आलोचना है। वे मूलतः आदर्शवादी कवि हैं। उन्होंने अपना एक शिल्प विकसित कर लिया है। उसमें कहने की साथ की संवेदन की तीव्रता, रंगों की गहराई और ख्यालों की लकीरें साफ साफ उभर कर आती हैं। उनकी कमजोरी यह है कि उन्होंने वर्तमान सभ्यता का जो विश्लेषण किया है वह सही नहीं है, वह अपूर्ण है। कुंवर नारायण के लिए वर्तमान सभ्यता यंत्र सभ्यता है, जबकि सत्य यह है कि यह सभ्यता अन्याय और शोषण पर आधारित पूंजीवादी सभ्यता है। फिर भी कुंवर नारायण के शब्द चित्र मुक्तिबोध के प्रिय हैं। वे कहते हैं, कुंवर नारायण ने जो बाह्य सौंदर्य चित्र प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह घर में आई किरण के हों या नारी रूप के, धूप के अथवा सिर्फ खुशी के, हमें यह कहना पड़ता है कि वे शब्द चित्र बहुत प्रभावोत्पादक हैं और साथ ही नई कविता के विकसित रूप को सूचित करते हैं। मुक्तिबोध द्वारा की गई उपयुक्त समीक्षात्मक टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं। प्रसाद की कामायनी में प्रस्तुत दार्शनिक समाधान को वायवी और अव्यवहारिक कहना, त्रिलोचन के काव्य में उसकी संघर्ष चेतना को लक्षित करना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में जीवन प्रसंगों की भूमिका को महत्व देना, परसाई द्वारा संवेदनात्मक रूप से किए गए यथार्थ के आकलन को उनकी सबसे बड़ी शक्ति बताना, प्रेमचंद को भारतीय सामाजिक क्रांति का प्रथम और अंतिम महान कलाकार कहना, शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंग बद्ध रसवादी कवि कहना, जीवन सत्य के उद्घाटन के कारण भारत भूषण अग्रवाल की कविता को महत्व देना, भारती में समाजशास्त्रीय जिज्ञासा का अभाव देखना, दिनकर की उर्वशी को कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित बताना और कुंवर नारायण द्वारा किए गए वर्तमान सभ्यता के विश्लेषण को अपूर्ण मानना मुक्तिबोध की प्रगतिशील समीक्षा दृष्टि का सूचक है। यह अवश्य है कि मुक्तिबोध ने रचना के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ही भी ध्यान दिया है और रचनाकारों के शिल्प की भी सराहना की है। वे जितना महत्व रचना को देते हैं उतना ही रचना प्रक्रिया को भी, किंतु उन्होंने कभी भी कहीं भी रचना के समाजशास्त्रीय पक्ष और उसके नैतिक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की है। रचना के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर उचित महत्व देने के कारण उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण अधिक विश्वसनीय हो गया है। कृति विशेष के संबंध में उनके निर्णय से असहमत हुआ जा सकता है, किंतु समीक्षा दृष्टि की प्रगतिशीलता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मुक्तिबोध द्वारा किया गया मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का विश्लेषण भी स्मरणीय है। हम यहाँ इस विवाद को नहीं उठाना चाहते कि निर्गुण मतवाद के जनोन्मुख रूप और उसकी क्रांतिकारी जातिवाद विरोधी भूमिका के विरुद्ध तुलसीदास ने पुराण मतवादी वर्णाश्रम धर के पुनर्विजय की घोषणा की या नहीं की, या मुक्तिबोध की इस मूल स्थापना भक्ति आंदोलन का आविर्भाव एक ऐतिहासिक सामाजिक शक्ति के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से हुआ पेश करना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह स्थापना उनके स्टिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण और प्रगतिशील चिंतन का प्रमाण है। कोई भी समीक्षक अपनी समीक्षा यात्रा में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बार बार करता है वे शब्द भी उसकी समीक्षा दृष्टि के परिचायक होते हैं। शर्त यह है कि उन्हें उस संदर्भ में देखा जाए जिसमें समीक्षक ने उनका प्रयोग किया है, क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग समीक्षकों द्वारा अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। अपने समीक्षा कर्म के क्रम में मुक्तिबोध ने मुख्यतः आधुनिक भावबोध, यथार्थवाद, विचारधारा, सामाजिक यथार्थ, सापेक्ष स्वतंत्रता, यथार्थोन्मुख व्यक्तिवाद, वस्तुवादी यथार्थोन्मुख दृष्टि, मानवतावाद, आत्माभिव्यक्तिवाद, क्षणवाद, रचना प्रक्रिया, अर्थबिंब, बिंब दृष्टि, मूर्ति विधान, फैंटेसी आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें से अधिकांश शब्दों का प्रयोग उनके पूर्व और समसामयिक समीक्षकों ने भी किया है। मुक्तिबोध इन शब्दों के उद्भावक नहीं है। उनका महत्व इस दृष्टि से अवश्य मान्य है कि उन्होंने इन शब्दों को अपनी समीक्षा दृष्टि के अनुकूल विशिष्ट अर्थ प्रदान किया है। उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्दों की उद्भावना भी की है। विश्व दृष्टि, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, अमूर्तिकरण आदि शब्द उनकी मौलिक उद्भावना के द्योतक हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त उपर्युक्त पारिभाषिक शब्दों में कुछ ऐसे बीज शब्द हैं जिनकी उनके द्वारा की गई व्याख्याएं ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनका संबंध उनकी समीक्षा दृष्टि से है। सबसे पहले आधुनिक भावबोध के लिए मुक्तिबोध इसे नई कविता की आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं, नई कविता की आत्मा है आधुनिक भावबोध। आज का सुशिक्षित मनुष्य अपने परिवेश परिस्थितियों से जो संवेदनात्मक प्रतिक्रिया करता है वे संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं या उनका सामान्यकरण नई कविता में प्रकट होता है। ऐसे सुशिक्षित मनुष्य का दृष्टिकोण मध्ययुगीन धार्मिक दृष्टि से अनुप्राणित अथवा ध्यायवादी भावुकता से परिपूर्ण कल्पना प्रधान नहीं होता। विज्ञान के इस युग में उसकी दृष्टि यथार्थोन्मुख तथा संवेदनशील होती है। वह यथार्थ संबंधों को ग्रहण कर यथार्थ बोध द्वारा संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं करता है। उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि आधुनिक भावबोध मध्ययुगीन धार्मिक दृष्टि तथा छायावादी भावुकता से भिन्न उपज के वैज्ञानिक युग के सुशिक्षित मनुष्य की अपनी परिवेश के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। जब यह प्रतिक्रिया सामान्यकृत होकर नई कविता में प्रकट होती है तब हम उसे आधुनिक भावबोध कहते हैं। मुक्तिबोध को खेद इस बात का है कि लोग यूरोप और अमेरिका को आधुनिकता का आदर्श देश मानते हैं और वहाँ के कवियों के भावबोध की नकल करते हैं। वे कहते हैं, खेद की बात यह है कि आधुनिकता के आदर्श भूत देश यूरोप अमेरिका माने गए हैं। फलतः बहुत से कवि यूरोपीय अमेरिकी भाव तत्वों को भारतीय परिवेश में उपस्थित करते दिखाई देते हैं। अगर यूरोप अमेरिका का कवि उदास है और उसका जी काट खाने को होता है तो हमारे यहाँ के कवि भी उदासी को फैशनेबल समझकर कविता में उदासी का चित्रण करते हैं, यह गलत है। मुक्तिबोध आधुनिक भावबोध से क्या समझते हैं यह एक दूसरे संदर्भ से अधिक स्पष्ट होता है। काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया शीर्षक निबंध में वे कहते हैं, वस्तुतः आधुनिक भावबोध क्या है? मैं अपनी खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बात कर सकता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक तत्वचित्त हों तथा हम वर्तमान परिस्थितियों को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की उपाय योजना करें। क्या यह आधुनिक भावबोध के अंतर्गत नहीं है कि मैं अपनी लेखनी द्वारा किसी विशेष लोकादर्श के लिए कविता लिखूं? यह इतना लंबा उदाहरण देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आधुनिक भावबोध या आधुनिकता बोध जैसे शब्द आधुनिक काव्य चिंतन के बीच शब्द बन गए हैं। आधुनिकता बोध और यथार्थ बोध ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग मार्क्सवादी और अस्तित्ववादी दोनों ही खेमों के विचारकों ने किया है, किंतु दोनों की व्याख्याओं में अंतर है। आधुनिक भावबोध से जो अर्थ मुक्तिबोध ने लिया है उससे भिन्न अर्थ इंद्रनाथ मदान ने लिया है। उन्होंने पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध को पहचानने की कोशिश की है। वे आधुनिकता के बोध को अस्तित्ववादी चिंतन तक सीमित तो नहीं मानते किंतु उसके अंतर्गत विसंगति, व्यर्थता, विडंबना आदि तत्वों को समाहित मानते हैं। भारतीय के काव्य अंधायुग में आधुनिकता बोध के प्रायः सभी तत्वों को लक्षित करते हुए वे कहते हैं, आधुनिकता का बोध अंधायुग के रथ की धुरी है। रथ और उसके भाग आधुनिकता को उजागर करने के लिए बड़े काम के हैं। इसके माध्यम से असंगति, विसंगति, व्यर्थता, विडंबना, निरर्थकता आदि के स्वर ध्वनित होते हैं। आधुनिकता और हिंदी साहित्य। तात्पर्य यह है कि असंगति, विसंगति, व्यर्थता, विडंबना आदि का बोध आधुनिकता बोध में समाहित है। मुक्तिबोध आधुनिकता बोध की दूसरे खेमे द्वारा की जाने वाली व्याख्या से परिचित है। इसके रहस्य को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, यह भावधारा कुछ इस प्रकार है। वर्तमान सभ्यता औद्योगिक सभ्यता है, चाहे वह साम्यवादी व्यवस्था क्यों न हो। उस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होता, व्यक्तित्व का नाश होता है। अतएव व्यक्तित्व नाश प्राय अवश्यंभावी है। अतएव जो कवि सामाजिक परिवेश के बारे में, सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्था के संबंध में सोचते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि वर्तमान समाज रचना में, वर्तमान जगत में मानव दुख अवश्यंभावी है। यह औद्योगिक सभ्यता का दोष है। ऐसी सभ्यता में जो आधुनिक भावबोध है वह है अनास्था और दुख भावना का, ग्लानि और विरक्ति का, अगति का। महान लोगों ने समाज में समाज के साथ बड़े बड़े प्रयोग किए और असफल हो गए। इसलिए अगति का मनुष्य का मूलभूत भाग्य है, उसे बदला नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर हम आगे चलकर नई समीक्षा का विवेचन करते हुए पुनर्विचार करेंगे। अब हम दूसरे बीच शब्द यथार्थवाद को लेते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार स्वांतर जगत और बाह्य जगत की विरोधी स्थिति से उठकर उन दोनों की साम्यावस्था से जड़ित जो व्यापक दृष्टिकोण है वह यथार्थवाद की आत्मा है। यथार्थवाद कला उस विरोधी स्थिति को मिटाने का प्रयत्न है जिसको मैं आध्यात्मिक कहता हूँ। यथार्थ का संबंध जनजीवन से जोड़ते हुए वे कहते हैं, आज का यथार्थ जनता के जीवन का यथार्थ है जो हम स्वयं रोजमर्रा जीते हैं। यदि हमारी काव्य प्रेरणा वस्तुतः जनजीवन से उद्भूत हुई हो तो जनजीवन की वर्तमान परिस्थितियों और उसके कष्टों का निवारण भी हमारे अनुभूति क्षेत्र का अंग होगा। मुक्तिबोध की पूरी समीक्षा यात्रा में उनकी दृष्टि यथार्थ केंद्रित रही है। कामायनी की समीक्षा करते हुए उन्होंने भाववादी कला और यथार्थवादी शिल्प का प्रश्न उठाया है। उनके अनुसार यथार्थवादी शिल्प के अंतर्गत यथार्थ के बिंब, यथार्थ के स्वरूप और गति के नियमों में बंधकर प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में यथार्थवादी शिल्प के अंतर्गत विभाव पक्ष का चित्रण होता है और उस पक्ष के आधार पर ही भाव पक्ष का उद्घाटन। इसके विपरीत भाववादी शिल्प के अंतर्गत भाव पक्ष का ही चित्रण होता है और विभाव पक्ष नेपथ्य में डाल दिया जाता है। भाववादी और यथार्थवादी शिल्प भेद मानते हुए भी मुक्तिबोध जीवन को समझने की दृष्टि को इनकी सीमा में नहीं बांधते। वे यह मानते हैं कि भाववादी शिल्प के अंतर्गत भी जीवन की दृष्टि समझने की दृष्टि हो सकती है। वे कहते हैं, यह बहुत ही संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प है उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो। कवि के जीवन ज्ञान के स्तर पर और कवि व्यक्तित्व की अनुभव संपन्नता के स्तर पर उसकी दृष्टि पर यह निर्भर है कि वह कहाँ तक वास्तविक जीवन जगत को उसके सहारे वास्तविक संबंधों के साथ ग्रहण कर उसे वस्तुतः समझता है। उपर्युक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक जीवन जगत को उसके सारे वास्तविक संबंधों के साथ साथ ग्रहण करने वाली दृष्टि ही यथार्थवादी दृष्टि है। इस प्रकार वस्तुतः यथार्थवाद जीवन और जगत को उसकी सारी जटिलताओं और वास्तविक संबंधों के साथ देखने और समझने की दृष्टि है। मुक्तिबोध मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को भी महत्व देते हैं। उन्होंने रचना की प्रक्रिया को सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों माना है, इसीलिए उन्होंने यथार्थ के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर भी विचार किया है। उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कलाकार वास्तविकता पर आधारित भाव प्रसंग की महत्ता के अनुकूल अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करता है। भाव प्रसंग की वास्तविकता पर अपने मन का रंग चढ़ाना मनोवैज्ञानिक यथार्थ को विकृत करना है। इसी अर्थ में उन्होंने शमशेर को मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कवि माना है। तीसरा बीज शब्द रचना प्रक्रिया है। भारतीय काव्य चिंतन में रचना और उसके प्रभाव का विवेचन किया गया है, रचना प्रक्रिया का नहीं। रचना प्रक्रिया का विवेचन रचनाकार की मानसिक यात्रा का विवेचन है। मुक्तिबोध ने कला के तीन क्षणों की व्याख्या में वस्तुतः रचना प्रक्रिया का ही विवेचन किया है। रचना प्रक्रिया का विवेचन के ऐतिहासिक संदर्भ की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, प्रगतिशील काव्य दृष्टि के विरोध में अथवा उसकी प्रतिकूल स्थिति में नई काव्य प्रवृत्ति में प्रकट स्व के महत्व को स्थापित करने के लिए रचना प्रक्रिया की स्वात्मकता को उठावदार उभारदार बनाने के लिए, जिससे कि अन्य जनों का ध्यान उसकी रचनात्मकता पर खींचे, रचना प्रक्रिया के विश्लेषण की ओर प्रवृत्त हुई। किंतु आगे चलकर ज्यों ही प्रगतिशील पैटर्न और प्रवृत्ति क्षीण होकर तिरोहित होने लगी, रचना प्रक्रिया के वास्तविक विश्लेषण से विमुखता होने लगी। यह विमुखता लाभकर नहीं हानिकर है। मुक्तिबोध यह मानते हैं कि रचना प्रक्रिया का तत्परक विश्लेषण कठिन है, क्योंकि यह सृजन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और कवि स्वभाव, कवि दृष्टि और विषय वस्तु के अनुसार वह बनती बदलती है। रचना प्रक्रिया का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए मुक्तिबोध ने मुख्यतः दो कारण बताए हैं। एक तो यह कि उसके अंतर तत्वों के विश्लेषण से सौंदर्य संबंधी किसी सामान्य सिद्धांत पर आया जा सकता है। दूसरे यह कि जीवन के विस्तृत क्षेत्र को साहित्य में लाने के लिए, अर्थात उसके प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभावोत्पादकता के रहस्य को समझना आवश्यक है। कुछ भी हो, काव्य की रचना प्रक्रिया के विश्लेषण में मुक्तिबोध का योगदान अविस्मरणीय है। उनके इस विश्लेषण से नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र समृद्ध हुआ है। चौथा भी शब्द फैंटेसी है। इस शब्द का प्रयोग तो पहले भी हुआ है, किंतु मुक्तिबोध ने अपनी कविता में इसके शिल्प का सार्थक प्रयोग और अपनी समीक्षा में इसके स्वरूप की विस्तृत विवेचना करके इसे नई अर्थवत्ता प्रदान की है। उन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी माना है और इसी संदर्भ में उसकी व्याख्या करते हुए कहा है, फैंटेसी के अंतर्गत कवि कल्पना जीवन की सारभूत विशेषताएं प्रकट करते हुए एक ऐसी चित्रावली प्रस्तुत करती है कि जिससे वह तथ्यात्मक जीवन, जिसकी की स्वानुभूत विशेषताएं प्रोद्भाषित की गई हैं, अधिकाधिक प्रच्छन्न गौण और नेपथ्यवासी हो जाए। संक्षेप में फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही वह भाव पक्ष कल्पना को तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि इस विधान ही के नियम होते हैं। कहना न होगा कि फैंटेसी की यह व्याख्या स्वयं मुक्तिबोध की कविताओं को समझने में हमारी सहायता करती है। मुक्तिबोध यह मानते हैं कि फैंटेसी के प्रयोग से सुविधा असुविधा दोनों ही होती है। सुविधा यह होती है कि हम भोगे गए जीवन की वास्तविकताओं को कल्पना के रंग में प्रस्तुत करते हैं और वास्तविकता के प्रदीर्घ चित्रण से बच जाते हैं। असुविधा यह होती है कि उसमें जीवन तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। मुक्तिबोध के कथन का तात्पर्य यह है कि फैंटेसी एक छीना पर्दा है जिसमें से जीवन तथ्य झांक झांक उठते हैं। इसीलिए फैंटेसी शिल्प में रची गई कविताओं में जीवन तथ्यों की पहचान कठिन होती है। मुक्तिबोध ने अपनी समीक्षा कर्म में कुछ पारिभाषिक शब्दों की उद्भावना भी की है। इनमें एक शब्द है विश्व दृष्टि। उसका प्रयोग उन्होंने अनेक संदर्भों में किया है। मानव की विश्व दृष्टि को वे उसकी चेतना का अंग मानते हैं, इसलिए इसे समझने के लिए चेतना के स्वरूप को समझना आवश्यक है। चेतना की व्याख्या करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं, मानव चेतना वस्तुतः मानव संबंधों से निर्मित तथा उससे उद्गत चेतना है। ये मानव संबंध समाज के विकास के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा समाज की विशेष स्थितियों की उनमें विशेषताएं प्रकट होती रहती हैं। विशेषता संयुक्त ये मानव संबंध मानव चेतना के मूलभूत नींव हैं, जिनके आधार पर कला, दर्शन, धर्म तथा साहित्य की सृष्टि होती है। इन्हीं मानव संबंधों की अवस्था विशेष के अनुसार मानव की विश्व दृष्टि भी बनती है। निश्चय ही उसकी यह विश्व दृष्टि उसकी चेतना का ही अंग है। मुक्तिबोध के कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे मानव संबंध भी बदलते हैं। मानव संबंधों के बदलने से उसकी चेतना का स्वरूप भी बदलता है। चेतना के स्वरूप का परिवर्तन यांत्रिक नहीं होता, उसके अपने नियम हैं। वे सापेक्ष रूप से परतंत्र हैं, किंतु यह तय है कि उनके परिवर्तन के नियंत्रक सामाजिक संबंध है। चेतना का अंग होने के कारण मानव की विश्व दृष्टि भी परिवर्तित होती रहती है और उसका भी नियमन मानव संबंधों के आधार पर ही होता है। उदाहरण के लिए प्रसाद जी ने अतीत भावुक गौरव छायाओं से ग्रस्त वेदोपनिषद आर्ष वातावरण से अनुप्राणित समाजादर्श से प्रेरित होकर अपनी विश्व दृष्टि तैयार की। यह विश्व दृष्टि कामायनी में प्रकट हुई। प्रकट है कि प्रसाद की विश्व दृष्टि उन्हीं मानव संबंधों पर आधारित है जो उनके युग की मानव चेतना को प्रेरित और उद्बुद्ध कर रहे थे। निश्चय ही अतीत की गौरव छाया प्रसाद युगीन चेतना का एक केंद्रीय तत्व था। मुक्तिबोध का एक बहुप्रयुक्त शब्द है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने नई कविता के संदर्भ में भी किया है। उनका कहना है कि रोमांटिक कवि भावों के आवेग को उनके स्वच्छंद प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता, किंतु नई कविता का कवि अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर नियंत्रित कर ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है। उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान अभ्यंतर वास्तविकता का विवेक नियंत्रित रगात्मक साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार के बिना न कोई बड़ा रचनाकार बन सकता है न सफल समीक्षक। मुक्तिबोध का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग है अमूर्तीकरण। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने काव्य की रचना प्रक्रिया के विश्लेषण क्रम में ही किया है। उनके अनुसार जिया और भोगा जाने वाला जीवन विशिष्ट वस्तु है। जब हम काव्य में उसकी पुनर्रचना करते हैं तो विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। पुनर्रचित जीवन वास्तविक जीवन से सार्थक एक होते हुए भी स्वरूपतः भिन्न होता है, विलग होता है। इस विलगीकरण की प्रक्रिया में ही कला में एक प्रकार के मूर्तिकरण या सामान्यकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्हीं के शब्दों में पुनर्रचित जीवन और वास्तविक जीवन के बीच जो अलगाव होता है, जो पृथक स्थिति होती है, उस अलगाव और पृथक स्थिति के कारण ही कला में एक अमूर्तीकरण और सामान्यकरण उत्पन्न होता है। विलगीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही कला अपना आत्मरूप ग्रहण करती है, वह स्वायत्त तो होती है। हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का यह अमूर्तीकरण सिद्धांत साधारणीकरण के सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। निश्चय ही यह उनके काव्य चिंतन की मौलिकता का प्रमाण है। ऊपर के समस्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य चिंतन किसी वाद के घेरे में बंधकर नहीं रह गया है। वे मार्क्सवादी अवश्य थे, किंतु वे व्यक्ति की संपूर्ण मानवीय गरिमा की स्थापना भी करना चाहते हैं। वे काव्य को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया ही नहीं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी मानते हैं। वे अकेले मार्क्सवादी हैं जिन्होंने नई कविता की एक धारा को महत्व दिया और उसे निम्न मध्यवर्गीय चेतना से संबंध मानकर उसकी व्याख्या की है। वे व्यक्ति स्वतंत्र तथा साम्यमूलक समाज की स्थापना को एक ही सत्य के दो पहलू मानते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य समीक्षा का आदर्श क्या था, यह उन्हीं के शब्दों में देखिए। इस पीढ़ी के संघर्षशील जीवन के स्नेह और मैत्री, बाधा और विजय, अनुत्साह और निराशा, उत्साह और विश्वास, लक्ष्य और आदर्श को जरा नजदीक से देखने पर पता चलेगा कि उसके द्वारा पैदा किए गए साहित्य की समीक्षा किस ढंग से की जानी चाहिए। एक ओर व्यक्ति स्वतंत्र और व्यक्तित्व की संपूर्ण मानवीय गरिमा की स्थापना और दूसरी ओर सामाजिक प्रवंचनाओं तथा बाधावरोधों पर विजय की स्थिति की स्थापना, ये जिंदगी का तकाजा है। व्यक्ति स्वतंत्र और व्यक्तित्व की संपूर्ण मानवीय गरिमा तथा नए साम्यमूलक शोषण विहीन मनोवोचित समाज की स्थापना, ये कई सत्य के दो पहलू और दो तकाजे हैं जो एक दूसरे पर अपनी पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए अवलंबित है। प्रश्न यह है कि यह सत्य जिंदगी में किस प्रकार किन मानसिक प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, आघात, प्रत्याघातों द्वारा प्रकट होते हैं। इनका उद्घाटन करने वाला साहित्य, इनका उद्घाटन करने वाली समीक्षा वस्तुतः महत्वपूर्ण साहित्य और महत्वपूर्ण समीक्षा होगी। जाहिर है कि मुक्तिबोध ने इसी स्तर की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।